इस डायमंड हॉल में विराजमान आप सभी डायमंड्स का और परमात्म परवरिश में पलने वाले आप सभी महान भाग्यशाली आत्माओं का इस प्रातःकालीन सत्र में हम आपका तहदिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय उषा बहन जी पधारे हैं। योग की विभिन्न अवस्थाएं इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु आप सभी महान आत्माओं से हमारा अनुरोध है, एक हाथ के ताली से आप उषा बहन जी का भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। आप सभी उषा बहन को जानते ही हैं, जैसा आपका नाम है वैसा आपका जीवन है। ज्ञान को रचनात्मक ढंग से आप प्रस्तुत करते रहते हैं। आपने चैनल्स में भी उषा बहन का प्रवचन सुना ही होगा। आप पॉलिटिशियन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में आपने अनेक प्रवचन देश विदेश में दिए हैं और साथ ही साथ आप सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप प्रोग्राम्स, बिजनेस और इंडस्ट्री कॉरपोरेट्स में आपने कराया है। आपके दो किताबें हैं, अध्यात्म की ओर और सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। इस विषय पर जो भी लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए। आदरणीय उषा दीदी के द्वारा राजयोग का प्रवचन मिले तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। योग की विभिन्न अवस्थाएं इस विषय पर आप सुनेंगे ही। आप सभी पावरफुल बनना चाहते हो तो ऐसा सुंदर विषय जो स्वयं भगवान ने कैसे पावर भरनी है, ये सारी विधियां इस सेशन में आप सीखेंगे। फिर से करतल ध्वनि से उषा बहन जी का आप स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी से योग की विभिन्न अवस्थाएं इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय उषा बहन जी,
बाबा के इस बेहद के घर में आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दो तीन दिनों से आप राजयोग के विषय में अनेक बातें सुनते रहे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे हैं योग से संबंधित, जो आज इस सत्र में हम आप सबके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। राजयोग की विभिन्न अवस्थाएं, राजयोग भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ते प्राचीन योग माना जाता है और ये योग की साधना जब हमें करनी है, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ स्वयं को जोड़ने की बात है, जिसकी विधि सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है। आज दिन तक योग को बहुत सीमित माना गया कि योगा माना एक्सरसाइज करना होगा, योगा माना आसन लगाने होंगे। परंतु भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई या कोई आसन नहीं लगवाए। इससे सिद्ध होता है कि योग का कुछ और भाव भी है और वो है एक आध्यात्मिक भाव कि मन को परमात्मा में एकाग्र करना। परंतु आज की दुनिया में अक्सर हर एक की ये शिकायत रहती है कि मन को लगाना तो चाहते हैं लेकिन मन बड़ा चंचल है, हठी है और वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। परमात्मा की याद में स्थिर करना जैसे बहुत मुश्किल लगता है। योग की जब बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छी महसूस होती है लेकिन मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता है। जिस तरह कहा कि साधना करने वाले के लिए तीन बातें आवश्यक रहती है, सबसे पहले साधना के लिए साधक चाहिए, दूसरा साध्य चाहिए और तीसरा साधन चाहिए। इस साधना में साधक हम स्वयं है, साध्य वो परमात्मा है और साधन है अपना मन। मनुष्य का मन बहुत तीव्र गति से चलता है। यहां बैठे बैठे घर में पहुंच जाएगा, यहां बैठे बैठे कोई व्यक्ति को याद कर लेंगे, वहां तक कि अगर कोई मित्र संबंधी विदेश में है तो उस समय ये नहीं आता कि वो व्यक्ति इतना दूर, इतने किलोमीटर दूर बैठा है, उसको कैसे याद करें। मन सेकंड में लंदन, अमेरिका, जहां भी वो व्यक्ति है वहां पहुंच जाता है। वहां तक कि कोई घटना 20 साल पहले घटी हो बचपन में और उस बात को याद करना हो तो मन 20 साल पीछे भी चला जाता है, 5 साल आगे भी चला जाता है। मन के लिए कोई बंधन नहीं है। मन कहां भी कभी भी विचरण कर सकता है। जब मन के पास इतनी अथाह शक्ति और क्षमता है तो क्यों नहीं उसी मन की शक्ति का प्रयोग हम राजयोग में भी करें, ईश्वर के सानिध्य में भी ले जा ले। लेकिन वहीं ये प्रश्न आ जाता है कि बाकी सबकी याद तो बहुत सहज आ जाती है, ईश्वर के सानिध्य में क्यों नहीं टिक पाता है। क्योंकि योग की कुछ अवस्थाएं हैं जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो योग की मुख्य रूप से चार अवस्थाएं हैं, जिन चार अवस्थाओं से हमें गुजरना है। सबसे पहली अवस्था योग की है जिसको हम कहते हैं मनन चिंतन की अवस्था, कि जब हम मन को सबसे पहले चिंतन में जोड़े, आध्यात्मिक चिंतन में उसको लगाए। चिंतन हमें देना पड़ेगा राजयोग में, बाकी सारे चिंतन अपने आप आ जाते हैं, लेकिन योग के लिए आरंभ में हमें मन को सुंदर विचार देने होंगे, मन को सुमन बनाना होगा। मन के विचारों का दमन नहीं करना है, मन को अमन नहीं बनाना है, मन को सुमन बनाना है, अच्छे विचारों से उसको भरना होगा। शुरू शुरू में जैसे जैसे हम विचार देने के अभ्यासी होंगे कुछ समय लग जाता है उसके अंदर, दूसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं रूहान की अवस्था, कि जहां आत्मा उस परमात्मा के सानिध्य में जब जाती है तो परमात्मा से हम कोई ना कोई संबंध जोड़ते हैं और उस संबंध के आधार से एक वार्तालाप ईश्वर के साथ करना होता है। बहुत सुंदर ये अवस्था है। उसके बाद तीसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं एकाग्रता, कि धीरे धीरे मन फिर एकाग्र होने लगता है और उसमें समाने लगता है। और तब जाकर के चौथी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं अनुभूति की अवस्थाएं, जहां अनुभव करने लगते हैं और बहुत सुंदर ये अनुभव की अवस्था भी होती है। इस तरह से ये चार अवस्थाएं हैं, मनन चिंतन की अवस्था, रूहान की अवस्था, एकाग्रता और अनुभूति की अवस्था। उसमें अगर सबसे पहली अवस्था हम ले कि जिसको कहा मनन चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि मन को हम ईश्वर में लगाने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं लगाने के लिए। क्योंकि जैसे कहा मनुष्य को याद करना तो सहज है, मित्र संबंधियों को याद करना सहज है, लेकिन ईश्वर की याद के अभ्यासी हम नहीं हैं और इसीलिए उसको लगाने की जरूरत पड़ती है। कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले उसको चिंतन देना पड़ता है, जिसके लिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि योग के लिए सर्वप्रथम आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ माना आत्मभाव में अपने आप को टिकाओ। आत्मभाव का मतलब क्या? कि जिस तरह मान लो एक व्यक्ति डॉक्टर है, जब वो घर में है तो घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, घर में वो अपने आप को घर का सदस्य समझता है, और घर का सदस्य समझता है तो घर के परिवार वालों से भी उसका मेलजोल हो पाता है, बच्चों के साथ वो समय बिताता है, बच्चों के साथ अगर खेलना हो तो खेल भी लेता है, क्योंकि उसने उस समय अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग होता है और उसको हॉस्पिटल जाना है कि उसको रटना नहीं पड़ता है मैं डॉक्टर हूं मैं डॉक्टर हूं मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जैसे ही उस भाव में वो आ जाता है मैं डॉक्टर हूं, उस स्मृति में वो बात आती है कि कौन याद आता है, डॉक्टर समझते ही उसको पेशेंट की याद आएगी, हॉस्पिटल की याद आएगी, ऑपरेशंस की याद आएगी, ट्रीटमेंट क्या देना है वो याद आएगा, किसको डिस्चार्ज देना है, किसका ऑपरेशन है, वो सारा प्लानिंग उसका शुरू हो जाता है। जब हॉस्पिटल के लिए निकलता है और हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां उसकी चाल कैसी हो जाती है? ऑफिशियल, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा है। कोई उसको गुड मॉर्निंग करता है, गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे बढ़ता है, खड़े नहीं रह जाता है फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि उसको अपने समय की वैल्यू है। ओपीडी में जब बैठता है मरीजों को देखना आरंभ करता है, उसमें मान लो कोई रिश्तेदार आ जाए और वहां पूछने लगे, डॉक्टर साहब कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सब ठीक है, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। माना कम टू द पॉइंट, वो फालतू बातें करने के लिए वहां नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो रिश्तेदार नहीं समझ रहा है, डॉक्टर समझ के बैठा है। अगर ये रिश्तेदारी की बातें करनी है तो घर में आइए, ये जगह नहीं है। इसलिए तुरंत आ जाता है, आपको क्या तकलीफ है बताइए, क्या सेवा करूं। कहने का भावार्थ ये है कि क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा, उस मनस्थिति में उस वक्त वो स्थित है कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है इलाज करना, फालतू बातें करना नहीं। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति अपने आप को टीचर समझता है, तो जब टीचर समझता है तो कौन याद आएगा, स्टूडेंट याद आएंगे। आज ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास को ये एक्टिविटी करानी है, ये क्लास का ये होमवर्क चेक करना है, एग्जाम लेना, यही सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। उस समय उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, क्योंकि उसने टीचर समझा है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आएगा, पत्नी की याद आएगी। जब अपने आप को पिता समझता है तो बच्चों की याद आएगी। जब खुद को बच्चा समझता है तो माता पिता की याद आती है। खुद को भाई समझता है तो भाई बहन की याद आती है। तो अपने को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा, परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आती है। जब हम भगवान के पास जाते हैं और अगर हम अपने आप को व्यक्ति समझेंगे तो ईश्वर की याद नहीं आएंगे, क्योंकि वो अव्यक्त है, वो व्यक्ति नहीं है, हम व्यक्ति है। और व्यक्ति समझ करके पूजा करेंगे, व्यक्ति समझ करके उसको याद करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्तियों की याद आएगी, ईश्वर की याद नहीं आती है। भारत में एक बहुत सुंदर प्रथा है कि जब मंदिर जाते हैं तो चमड़े की चीज को बाहर उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई है। चमड़े की चीज को तो बाहर उतार देते, लेकिन ये चमड़ा जिसका अभिमान करते हैं, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो, उसके बाद अंदर जाओ। तिलक लगाया अर्थात स्वयं को आत्मभाव में स्थित करो कि मैं देह, मैं फलाना फलाना नहीं, हे प्रभु मैं आत्मा आपकी संतान, आपको नमन कर रही हूं। कितना ऊंचा भाव है। ये प्रथा चलती आई, लेकिन कभी उस भाव से हम ईश्वर के मंदिर में गए ही नहीं, न अपनी श्रद्धा और भावना को अर्पित किया, इसलिए मन कहां से लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मन कभी कभी विचलित हो जाता है, इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि कभी अभ्यास नहीं किया। तो प्रथम अवस्था आत्मचिंतन के साथ साथ उसको हम कहते हैं विचार सागर मंथन अवस्था या मनन चिंतन की अवस्था। क्यों इसको विचार सागर मंथन कहते हैं, क्योंकि जैसे नदी होती है, कभी कभी आप देखो नदी का पानी एकदम स्थिर होता है, जो पूरा प्रतिबिंब नदी के पानी के अंदर दिखाई देता है। तालाब का पानी देखो तो वो भी एकदम स्थिर होता है, पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन सागर का पानी कभी स्थिर नहीं होता है, सागर में लहरें चलती ही रहती है, छोटी छोटी लहरें भी चलती रहती है, कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और कभी कभी समुन्दर में तूफान आने लगता है। हमारा मन भी एक सागर की तरह है। मन के अंदर कोई क्षण ऐसी नहीं जब विचारों की लहरें न उठ रही हो। हर वक्त व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, छोटी छोटी लहरें भी चलती ही रहती है। कभी कोई टेंशन हो जाता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है मन के अंदर, व्यर्थ विचारों की, नेगेटिव विचारों की लहरें उठने लगती है। और जब कोई विघ्न आ जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मन के अंदर भी तूफान खड़ा होने लगता है। इसलिए मन की तुलना सागर के साथ की गई है कि मनुष्य का मन एक सागर की तरह है, अनंत लहरें उसमें उठती रहती है। अब ये लहरें जो है, जो उठती है, उसका मंथन करना है। शास्त्रों में हमने सुना एक कथा कि सागर मंथन हुआ, और ये सागर मंथन किन के बीच में हुआ तो कहा जाता असुर और देवों के बीच में ये सागर मंथन। जब असुर और देवों के बीच में ये सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। और कहा जाता कि वो विष की बदबू ऐसी थी जिस कारण देवताएं बेहोश हो रहे थे। जब बहुत कम देवताएं रह गए तो वो देवताएं सभी मिल करके शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी को विनती करते हैं कि इस तरह अगर सारे देवताएं बेहोश हो गए फिर तो असुर जो है सागर मंथन करते हुए अमृत का कलश निकाल करके अमर हो जाएंगे, इसीलिए आप कुछ कीजिए। उस समय कहा जाता शंकर जी आते हैं और सारा विष ग्रहण कर लेते हैं और जो देवताएं बेहोश हो गए थे उन्हें सुरजित करते हैं। फिर वापस सागर मंथन आरंभ होता है, धीरे धीरे उसमें से एक एक चीज निकलना आरंभ होती है और अंत में जाकर के वो अमृत कलश निकलता है। जो अमृत कलश लक्ष्मी जी ने धारण किया और मोहिनी स्वरूप धारण करके और देवों को पिलाया जिससे वो अमर हो गए, और इस तरह असुर उस अमृत से वंचित रहे। ये कथा हम सभी ने सुनी है, लेकिन वास्तव में ये मेडिटेशन की प्रथम अवस्था है। जैसे कहा मनुष्य का मन सागर की तरह है जिसके अंदर अथाह लहरें उठती रहती है, और जिसके अंदर ये अथाह लहरें जो उठती है मन के अंदर, तो देव और असुरों के बीच में ये मंथन हो रहा है। देव कौन है और असुर कौन है हमारे मन के अंदर? तो जो बुरे विचार है वो असुर के बराबर है और जो अच्छे विचार है वो देवों के बराबर है। जब हम अपने मन को अच्छे विचार देते हैं, आत्मचिंतन के, परमात्म चिंतन के, तो ये देवों के बराबर है। और जो बुरे विचार अंदर आते हैं, ये बुरे विचार असुरों के बराबर है, नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार। अब इस दोनों के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। अमृत कलश अंदर ही है, बाहर नहीं है, लेकिन उस अमृत कलश निकालने से पहले सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। कभी कभी बुरे विचार इतने हावी हो जाते हैं जो अच्छे विचारों को एकदम दबा देते हैं। अच्छे विचार जैसे शून्य होने लगते हैं और बुरे विचार अंदर में ज्यादा आते हैं। और उस समय कई लोग घबरा जाते हैं कि लगता है मेरे मन के अंदर कभी अच्छे विचार होगा ही नहीं, या मैं मेडिटेशन योग कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आए, और ऐसे विचार योग में आते तो मेरे अंदर शायद वो कैपेसिटी नहीं योग करने, ऐसे डर के मारे योग छोड़ देते हैं। लेकिन ये अच्छी निशानी है बुरे विचार आना भी, क्योंकि वो विष निकल रहा है, निकलने दो उसको, विष को वापस अंदर नहीं डालो। ये नहीं कि ये बुरे विचार कभी नहीं आए थे, आए थे, लेकिन उस समय हमने क्या समझा था कि ये विचार मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, ऐसे करके उसको पाल करके हमने अंदर ही रख दिया था, तो वो विष तो निकलेगा ना। जिस तरह आप कोई होम्योपैथी की मेडिसिन या आयुर्वेदिक की मेडिसिन करते हैं तो उस समय डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप जो है घबराना नहीं, ये मेडिसिन लेंगे तो अंदर का जो खून का विकार है वो पहले बाहर निकलेगा, तो आपको लगेगा कि जैसे बढ़ गई, जैसे किसी को स्किन की डिजीज हो वो होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथी वाले या आयुर्वेदिक वाले वो कहेंगे कि पहले ये बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि अंदर का जो खून के अंदर की गंदगी है वो बाहर निकलेगी तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी और सारी स्किन क्लीन हो जाएगी, कहते हैं ना। तो ठीक इसी तरह मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो जो बुरे विचार इतने जन्मों से अंदर भरे हैं वो निकलेंगे तो सही, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, निकलने दो। अच्छे विचार बेहोश हो जाएंगे, यानी जैसे समाप्त तो हो जाएंगे, बुरे विचार हावी हो जाएंगे, ये होगा। लेकिन ऐसे समय पर क्या करो, शिवजी का आवाहन करो, शिवजी को वो विचार भी अर्पित कर दो। देखो मंदिर में जाते हैं ना तो देवताओं के ऊपर अच्छे अच्छे फूल चढ़ाएंगे, गुलाब के फूल, मोतिये के फूल, हाँ, या रजनीगंधा के फूल, और शिवजी के ऊपर कौन से फूल चढ़ाते हैं, कौन से फूल चढ़ाते हैं, सबसे जहरीले फूल चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाएंगे, धतूरे के फूल चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये सारा विष उनको दे दिया है, तो ये बुरे विचारों का विष भी परमात्मा को अर्पित कर दो, इसको अंदर नहीं रखो। ये बुरे विचार आएंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, ये आना स्वाभाविक है, ये अंदर की गंदगी निकलेगी बाहर, उसको निकलने दो, और निकल करके उसको शिवजी को अर्पित कर दो कि ये विचार भी आपको अर्पित। ये मत सोचना कि शिवजी को परमात्मा को ये बुरे विचार कैसे अर्पित करे, अरे भक्ति में हमने वो धतूरे के फूल, अक के फूल ही अर्पित किए, तो ये जो अंदर का अक है वो अर्पित करो, निकाल दो, फिर वापस सागर मंथन आरंभ करो। धीरे धीरे आप खुद के विचारों में ही एक परिवर्तन को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अंदर से ही वो अमृत कलश भी निकलेगा, और जब वो अमृत कलश निकलेगा तो आप खुद ही महसूस करेंगे इतना सुंदर आपके अंदर अच्छे विचार निर्मित होंगे, रचनात्मक विचार आने लगेंगे, क्योंकि सारी गंदगी अंदर की निकल गई, तो फिर जो अंदर की अच्छाई है वो बाहर निकलने लगेगी, वही तो अमृत कलश है। अमृत कलश और कोई थोड़ी है। वो विचार जब निकलते हैं और वो विचार जब अमर हो जाते हैं तो कहा देवताएं अमर हो गए और असुर समाप्त हो गए। बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और अच्छे विचार अमर होने लगते हैं। तो इसीलिए ये राजयोग की प्रथम अवस्था है। ये संघर्ष अंदर जरूर चलेगा और अंदर से ही वो अमृत कलश निकलना है। और जब ये अमृत कलश निकलता है तो कौन धारण करता है? लक्ष्मी जी मोहिनी रूप लेकर के धारण करती है। हमारे अंदर लक्ष्मी जी कौन है? हमारे अंदर लक्ष्मी कौन है? तो हमारे लक्षण ये लक्ष्मी जी है। जैसे दुनिया में कोई अच्छे लक्षण वाली लड़की अगर ब्याह करके घर में आती है बहू के रूप में तो क्या कहते हैं? हमारे घर में सुलक्ष्मी आई है। और बुरे लक्षण वाली अगर कोई आ जाए तो क्या कहते हैं? कुलक्ष्मी आई है। तो हमारे लक्षण ही लक्ष्मी है। तो जब ये अच्छे विचार हमारे लक्षणों में आने लगेंगे, माना लक्ष्मी जी ने उस अमृत कलश को धारण किया और वो हमारे संस्कारों को सींचने लगती है और तब वो देव अमर हो गए क्योंकि संस्कारों में आ गए। तो वो संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं और जब संस्कार परिवर्तन हो जाते तो बहुत सुंदर जीवन होने लगता है। इसीलिए आरंभ में ये संघर्ष जो चलता है, अंदर में युद्ध चलता है, उस युद्ध को अच्छी निशानी समझो और समझो कि हाँ हम अच्छे रास्ते पर, ये निशानी सही है, सही है। इसलिए घबराना नहीं कि ये बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, कभी घबराना नहीं। लेकिन वो बुरे विचार शिवजी को अर्पित कर, जितनी बार आए शिवजी को अर्पित करो, शिवजी को अर्पित कर, सारी गंदगी को निकाल दो, वापस मंथन आरंभ करो। लेकिन उसके लिए एक सलाह जरूर दूंगी मैं आपको। क्या आप सोचेंगे बस मुझे मेडिटेशन ही करना है, ज्ञान तो सुन लिया समझ लिया और क्या करना है? ज्ञान सुन करके माउंट आबू जाके आए, इतने अच्छा ज्ञान की बातें सुन लिया समझ लिया, अब सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है? मेडिटेशन हम घर में भी कर सकते? नहीं, नहीं होगा। इतना याद रखो, गीता में भी ये बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने अर्जुन को कि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होगा। जो अच्छे विचारों का स्रोत चाहिए आपको वो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। जब ये सागर मंथन करेंगे, बुरे विचारों को हराना है हमें तो अच्छे विचारों का स्रोत चाहिए, देवताएं चाहिए हमें, तो ये अच्छे विचारों का स्रोत ज्ञान से ही प्राप्त होगा। तो बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता है। इसीलिए जितना आप ज्ञान के महावाक्य सुनते जाएंगे, कई लोग सोचते हैं लेकिन वहां एक ही बात तो सुनाते हैं, है ना, रोज रोज हमें लगता है एक ही बात में कही जा रही है, तो फिर हम सोचते हैं कि घर में टीवी पर देख लेते हैं ना। टीवी पर देखने से कभी कोई बच्चा पढ़ा है? हाँ, स्कूल में आप जब घर में बच्चे को ABCD सिखा सकते हैं फिर भी स्कूल क्यों भेजते हैं? घर ABCD सिखानी है ना तो घर में सिखा सकते हैं ना, स्कूल क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं कि घर में अगर उसको सिखाने बैठे, कोई मेहमान आ गए, दूध वाला आ गया, कोई फोन आ गया, तो एकाग्रता नहीं बनती है। घर में टीवी भी चलती रहेंगे, कुछ भी और चलता रहेगा तो एकाग्रता नहीं बनती है। इसीलिए उसको स्कूल में भेजते हैं ताकि वहां माहौल मिलता है, संग मिलता है, वैसी बातें मिलती है, सिखाने वाले होते हैं, तो वो वायुमंडल भी उसको मदद करता है एकाग्रता के लिए, सीखने के लिए। ठीक इसी प्रकार घर में टीवी टीवी पर आप सुन रहे हैं, कोई फोन आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई दूध वाला आया, कोई व्यक्ति आ गया और कोई आ गया, तो एकाग्रता कभी नहीं बनेगी। इसीलिए आप घर में सुनेंगे, सुनते समय अच्छा लगेगा टीवी पर, लेकिन उसके बाद पूछो क्या सुना, भूल गए, एकाग्रता ही नहीं, तो चिंतन में वो चीज ला नहीं सकेंगे। इसीलिए प्रतिदिन सेंटर जाएंगे, सेंटर माना स्कूल, इसीलिए हम उसको कहते ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय माना वहां माहौल मिलता है, विद्यालय माना वहां लक्ष्य मिलता है, वहां बातें मिलती है, बार बार रिवाइज करते हैं। आज स्कूल में भी एक साल बच्चे को ABCD कितनी बार घुटाते हैं, तब ये हाथ को प्रैक्टिस होती है ABCD लिखने के लिए। 10 बार होमवर्क के लिए भी दे देंगे, 10 बार स्कूल में भी अलग अलग साधनों के माध्यम से ABCD सिखाते हैं ना, तब जाकर के एक साल के बाद वो ABCD पक्की कर पाता है। तो एक मन को अच्छे विचारों में ढालना है तो कितना समय लगेगा, ये हाथ को ढालने में एक साल लगता है, तो मन को अच्छे विचारों में ढालने के लिए कितना समय लगेगा। कुछ समय तो दो, थोड़ी धैर्यता रखनी पड़ती है। और जब उसको सेंटर पर जाते हैं, वो ज्ञान की बातें सुनते हैं, उसको आचरण में लाने लगते हैं, तब जाकर के वो अच्छा चिंतन मिलता है, नहीं तो विष का विष बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अच्छे विचारों का स्रोत नहीं है। इसलिए अच्छे विचार देना ही पड़ता है, तब जाकर के बुरे विचार को समाप्त कर पाएंगे, नहीं तो वो समाप्त नहीं होगा। तो ये है मेडिटेशन की प्रथम अवस्था, कि जहां हमें मन को सुंदर विचार देना होता है। और इस तरह से जैसे जड़ी बूटियों के माध्यम से हम उस लेप लगाते हुए अगर बीमारी बढ़ती भी गई तो भी उसको सफा कर देते हैं, ठीक इसी तरह ये अच्छे विचार जो हम सेंटर पर ज्ञान के माध्यम से देते हैं, आध्यात्मिक बातों से जब उसको सींचते हैं, तो वो भी उन जड़ी बूटी वाला काम ही करता है, लेप लगाने वाला ही काम करता है, जो हमारी अंदर की ये जो विष है उसको समाप्त कर देता है। और समाप्त करते हुए धीरे धीरे फिर हम आगे की अवस्था पर बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं दूसरी अवस्था, रूह रूहान की अवस्था। रूह रूहान, रूह यानी आत्मा, आत्मा की परमात्मा के साथ एक वार्तालाप, एक कनेक्शन जोड़ना परमात्मा के साथ। अब ये कनेक्शन जब जोड़ते हैं, जैसे दुनिया में दो वायर का कनेक्शन जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों वायर का ऊपर का रबर उतारना पड़ता है और फिर उसको जोड़ा जाता है, तब करंट पास होती है। ठीक इसी तरह आत्मा को भी परमात्मा के साथ जोड़ना है, और जोड़ने के लिए दोनों का रबर उतारना पड़ता है। अब ईश्वर को कोई आवरण नहीं है, कोई रबर नहीं है, लेकिन हमको कितने आवरण चढ़े हुए हैं, कितने रबर लगे हुए हैं। अब ये आवरण को उतारने के लिए ये बात कही आत्मभावस्थ, कि जब स्वयं को आत्मनिश्चय समझ करो, तब उस परमात्मा के सारे आवरण को सहजता से हम हटा सकते हैं, और तब हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। लेकिन जैसे दुनिया में भी वायर का कनेक्शन करते हैं तो दो पिन चाहिए, दो पिन लगाओ तब करंट आती है, एक पिन नहीं होती है। ठीक इसी तरह हमारी भी दो पिन कौन सी है जो ईश्वर में जोड़नी है, मन और बुद्धि, ये दो पिन है। मन क्या करता है? मन सोचने का काम करता है। तो बुद्धि क्या करती है? देखने का कार्य करती है। जैसे अगर उदाहरण दूं मैं आपको कि मान लो कि मेरे सामने एक मशीन है, मुझे मशीन चलाना नहीं आती और मैं सोचती रहती हूं शायद ऐसा करना होगा, शायद ऐसा करना होगा, शायद ये बटन पहले दबाना होगा, लेकिन डरती हूं मैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया तो। लेकिन कोई आकर के मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे कि देखो पहले ये बटन लगाना, ये बटन चालू करना, उसके बाद ऐसा करना, ये बटन चालू करना, उसके बाद ऐसे करना और फिर ये करने के बाद फिर ऐसा करना, तो बंद हो जाएगा। सारा डेमोन्स्ट्रेट करके मुझे दिखा दिया, देखने के बाद क्या कहूंगी? अब समझा किसको कैसे चलाना है। जब तक देखा नहीं तब तक समझा नहीं। तो अपने को आत्म समझना माना क्या? देखना, अंतर चक्षु से स्वयं को देखना। अंतर चक्षु कहां है? तो बुद्धि के पास ये विवेक के चक्षु है, ज्ञान के चक्षु है। तो जब बुद्धि के चक्षु से हम देखते हैं, ज्ञान के दिव्य चक्षु से हम देखते हैं आत्मा को, परमात्मा को, और फिर उसके ऊपर विचार चलाने का कार्य आरंभ करते हैं। तो मन और बुद्धि ये दो पिन है जो जोड़नी है, तब करंट पास होता है। अब होता क्या है कि हम बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, स्वयं को कमेंट्री दे देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, दे तो दिया, विचार तो दे दिए लेकिन देखा नहीं, बुद्धि को फ्री छोड़ दिया, मन को कहा तुम सोचो। तो होता क्या है, थोड़ी देर के बाद करते हैं विचार और फिर बुद्धि अचानक कुछ न कुछ खिलौना दिखाती है। जैसे मान लो घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है। अब आप बड़े बच्चे को फ्री कर दो कि तुम्हें जो मर्जी आए करो और छोटे बच्चे को कहो बैठो पढ़ाई करने बैठो, पढ़ेगा? वो बड़े को फ्री छोड़ दिया और छोटे को कहो बैठो तुम पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, बैठेगा वो बच्चा? एकाग्रता होगी? अब वो बड़ा बच्चा फ्री हो गया, किसके साथ खेले? तो वो क्या करता है, खिलौना लेता है और दरवाजे के पीछे खड़ा रह करके छोटे को खिलौना दिखाता है ना? अब ये छोटे को जब खिलौना दिखाता है तो छोटा का मन लगेगा पढ़ने में? नहीं लगेगा, वो आपके तरफ देखेगा और उसी समय कोई मोबाइल पर फोन आ गया, आप बात करने लग गए तो छोटा क्या करेगा, मौका देखा भाग गया। जैसे ही फोन पूरा हुआ और आपका ध्यान गया, कहाँ गया वो, बुलाओ उसको, फिर बुलाया छोटे को, बैठ पढ़ने के लिए, होमवर्क कर, ABCD लिखो, ये स्पेलिंग लिखो, लिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फिर वो बड़ा बच्चा फ्री हो गया, फिर वो खिड़की के पास जाकर के उसको बॉल बैट दिखाता है। अब ये छोटा पढ़ेगा, बॉल बैट देख रहा है, वो बड़ा उसको दिखा रहा है। आप सभी समझदार है कि अगर छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाओ पढ़ने के लिए, एक को फ्री नहीं छोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह आत्मा के भी ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि दो बच्चे हैं। अब हम क्या करते हैं, बड़े बच्चा जो है बुद्धि है, मन छोटा बच्चा है, बुद्धि को फ्री छोड़ देते और मन को कहते हैं लग तुम ईश्वर में लग, और उसके लिए उसको विचार देते मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान है, शिव बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, है? अब ये बड़ा बच्चा फ्री हो गया तो कोई ना कोई खिलौना तो दिखाएगा, तो वो मन को खिलौना दिखाता, क्या दिखाता, घर दिखाता है। अब जैसे घर देखा तो मन भाग जाता, अरे घर में गैस बंद किया कि नहीं किया, अब गैस दिखाई दिया। कभी अलमारी दिखाई देती, अलमारी बंद की कि नहीं किया, अलमारी अगर खुली रह गई, ये चीज वहीं रखी पड़ी है, किसी के हाथ लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। अब बैठे हैं आत्माओं आत्माओं कर रहे हैं, भाग गया मन, घर में चला गया, अलमारी में चला गया, गैस में चला गया, फिर खींच के ला गया, चलो जो होगा देखा जाएगा, फिर मैं आत्माओं शिव बाबा की संतान हूं लगा रहे हैं, फिर बुद्धि ने कोई और खिलौना दिखा दिया, कोई व्यक्ति दिखा दिया। अब कोई व्यक्ति का चेहरा याद आते ही क्या हुआ, अरे उस व्यक्ति को ये संदेश देना तो भूल ही गए, अब ये बहाना बनाना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, तब बात चल जाएगी, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा उस व्यक्ति को, है ना। अब बैठे हैं परमात्मा को याद करने, मन चला गया, कहाँ गया, है ना। और उतने में फिर सफेद लाइट हो जाती है, कहते हमारा तो योग लगता ही नहीं है, हमारा तो योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता है, बुद्धि को फ्री छोड़ दिया, मन को विचार दे रहे हैं, तो बार बार बुद्धि मन को खींच के ले जाती है दुनिया के अंदर। इसीलिए अगर मन को लगाना है तो बुद्धि को भी बिठाओ, इसीलिए इसको कहते हैं बुद्धि योग। जब बुद्धि योग लगेगा तो मन मना भव होना आसान हो जाएगा, अगर बुद्धि योग ही नहीं लगा तो मन मना भव कहां से होंगे, सोचने की बात। इसलिए बुद्धि माना बुद्धि को चित्र दो, आत्मचिंतन कर रहे हैं तो आत्मा समझो, उसको देखो अंतर चक्षु से। शिव बाबा का चिंतन कर रहे हैं तो शिव बाबा को देखो, जब तक उसको देखेगी नहीं तब तक मन लगेगा नहीं, क्योंकि जो बुद्धि देखेगा मन वही सोचने के लिए भाग जाएगा, इसीलिए लगता नहीं। और जब ये दोनों लग गए, ये दोनों पिन लग गई, और लगाने के लिए इसीलिए कहा रू रूहान करो, लगेगा कैसे, तो कोई ना कोई संबंध जोड़ो। इसीलिए भक्ति में हमेशा एक प्रार्थना हम गाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहते हैं ना, या कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव त्वमेव, गाते हैं ना, ये प्रार्थना गाते हैं ना, ये श्लोक बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या हुआ कि तुम मात पिता भी हो, त्वमेव माताश्च पिता, तुम माता भी हो पिता भी हो, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बंधु भी हो तो सखा भी हो, तो संबंध जोड़ते गुरु द्रविणम त्वमेव, आप गुरु भी हो सतगुरु भी हो, तो परमात्मा के साथ भी हमें संबंध जोड़ना है। अब मनुष्य के अति निकट के कितने संबंध हैं जो संबंध हम जोड़ सकते हैं ईश्वर के साथ, तो मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध हैं जो हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और उस आधार पर वार्तालाप कर सकते हैं। पहला संबंध है मात पिता और बच्चे का, दूसरा संबंध है टीचर और स्टूडेंट का, बच्चा बड़ा होता है स्कूल जाता है तो उसका टीचर के साथ एक संबंध जोड़ता है, तीसरा संबंध है गुरु और शिष्य का, जैसे और बड़ा होता है तो गुरु करते, चौथा संबंध है दोस्त का, तो खुदा को भी दोस्त बना करके देखो, पांचवा संबंध है प्रियतम का जो मीराबाई ने जोड़ा, और छठा संबंध है बच्चे का, जहां खुद माता पिता है और ईश्वर को बच्चा बनाना है। ये 6 संबंध अति निकट के हैं, जिसकी याद हमें समय प्रति समय आती रहती है तो ये छह संबंध ईश्वर के साथ जोड़ना है। जो आपको प्रिय लगे वो संबंध जोड़ो। सबसे पहला संबंध जो कहा मात पिता और बच्चे का, आज अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने मात पिता को, शारीरिक मात पिता को याद करो, सहज है या मुश्किल है? सहज है। मात पिता कहा तो बस उनका चेहरा सामने आ गया और उसकी याद आती है। क्या याद करते हैं, क्या विचार चलता है जब मात पिता को याद करते हैं तो मन के अंदर क्या विचार आता है, क्या विचार आता है? देखो याद सहज है लेकिन क्या विचार आता पता ही नहीं। हाँ, उन्होंने जो प्यार दिया वो याद करते हैं, और क्या याद करते हैं, और क्या याद करते हैं? उन्होंने जो परवरिश दी, जो संस्कार दिए, वही याद करते रहेंगे बस। हर बार वही याद करेंगे या और भी कुछ याद करेंगे? कभी आपने छोटे बच्चों की आपस में बात सुनी हो? बड़े मजेदार बात होती है, उनके माँ बाप को वो कैसे याद करते। तो एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपने दोस्त को क्या कहते हैं कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। अब वो प्यार कैसे करती है वो दर्शाने के लिए क्या कहते हैं कि मेरे लिए ये खिलौना लेके आई, या मेरे लिए ये चीज लेके आई जो उन्होंने गिफ्ट किया, मुझे दिखाया अपने दोस्तों को। तो दूसरा जो लड़का होता है ना, बच्चा जो होता है, वो चुप नहीं बैठता है। वो क्या कहता है, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती, मेरे लिए लाने वाली है। उसने कहा है, कहा बा कुछ नहीं है, लेकिन क्या अपने माँ बाप को वो नीचा कभी नहीं दिखाने देगा। क्या कहेगा, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए भी लाने वाली है। लेकिन क्या होता है, घर में आने के बाद वो बच्चा डिमांड करता है कि मेरे को ये चीज चाहिए। और जब ऐसा कहता है तो आपको लगता है पता नहीं इसका दिमाग कौन भरता रहता है, रोज नई नई चीजें की मांगनी करता रहता है। और उस समय जब बहुत जिद करता है तो माँ क्या करती है, एक थप्पड़ मारती है, चुप बैठ, कोई चीज मिलेगी नहीं तेरे को, जब देखो तूफान मचाता है। अब ये बच्चे को जो थप्पड़ लगी है, अपने भले हल्के से थप्पड़ लगाई लेकिन ये थप्पड़ उसके चेहरे को नहीं लगी, उसकी भावना को लगी। और उस समय उसको ये महसूस होता है, मेरे दोस्त की मम्मी उसको प्यार करती है और मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है, नहीं करती है। और ये अगर उसके दिमाग में बैठ गया, उसके बाद आप कितनी भी अच्छी चीज ला करके दो उसको, नहीं, वो भूलेगा नहीं, वो थप्पड़ नहीं भूलता है। आज का बच्चा इतना सेंसिटिव है। अगर आपको नहीं ला करके देना है, नहीं ला करके दो, लेकिन थप्पड़ नहीं मारो बच्चे को। उस समय उसको ये कहो, जरूर हम ले आएंगे, अरे इससे अच्छी चीज लेके आएंगे, लेकिन शहर से ले, हम शहर जब जाएंगे ना तब लेके आएंगे आपके लिए, बढ़िया चीज लेके आएंगे, वो तो कुछ नहीं है, दो दिन में टूट जाएगी। तो उसको लगेगा हाँ मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। तो दूसरे दिन जब उसके दोस्त पूछते हैं, लाई तेरी मम्मी, लाई, वो क्या कहेगा, अरे मेरी मम्मी ने कहा शहर जाएंगे ना, हम इससे भी बढ़िया चीज लेके आएंगे। लेकिन अगर थप्पड़ लगाई होंगी तो उसके दोस्तों के सामने जब उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ तेरी मम्मी ले आई, क्या जवाब देगा वो? इसलिए उसको लगता है मेरी मम्मी, और ऐसी वो बात अंदर घर कर जाती है, बैठ जाती है कि उसको जिंदगी भर वो बात याद रहती है। उसके बाद भले आप अच्छे से अच्छी चीज भी ला करके दो तो भी उसको लगता है आप प्यार नहीं करते हैं। इसीलिए कभी अपने बच्चे के पर थप्पड़ नहीं लगाओ, लेकिन उसको ये कह दो कि हम और अच्छे, दो दिन के बाद वो बच्चा भूल जाने वाला है, उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन थप्पड़ तो नहीं लगाओ, आप उसको कहो और अच्छी चीज हम ले आएंगे। तो हमेशा माँ बाप को जब याद करते हैं, उनके प्यार को जब याद करते हैं, तो ये चीजों से याद करता है बच्चा, वो समझता है यही प्यार है। तो इसी तरह परमात्मा को हम जब माता पिता के रूप में याद करते हैं, तो कैसे याद करना है? जिस तरह माता पिता को उनके गुणों को लेकर के याद किया जाता है, आज भी जब आप अपने माता पिता को याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे? उन्होंने कितना सहन किया, उन्होंने आपके लिए कितना त्याग किया, उन्होंने आपके लिए कितना सेक्रीफाइस, यही बातें याद करते ना, गुणों को याद करते। तो ईश्वर तो गुणों में अनंत है, उन गुणों के आधार पर उसको याद करो, यही तो माता पिता की याद है। और जब इस तरह से याद करेंगे तो आप भी ईश्वर के प्यार को महसूस कर पाएंगे। ये है माता पिता की याद। सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल होगी? सहज होगी। उसके बाद जैसे टीचर, वो एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है यहाँ पर मुझे, कि एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में वो क्या देखता है? स्वप्न में वो देखता है कि जैसे वो समंदर किनारे किनारे चल रहा है, ध्यान से देखता है तो कहीं कहीं उसको दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं, कहीं कहीं चार पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और ध्यान से देखता है तो उसने देखा कि जब उसके जीवन के बहुत सुंदर दिन थे, खुशी भरे दिन थे, सुख भरे दिन थे, तो चार पैरों के निशान दिखाई दिए। और जब उसके जीवन के दुख भरे दिन थे, कष्टों भरे दिन थे, तब उसको दो निशान दिखाई दिए। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है कि हे प्रभु, मैंने तो समझा था तुम हर वक्त मेरे साथ हो, लेकिन आज क्या देखता हूँ? जब मैं सुख भरे दिन में था, खुशी भरे दिन में था, तब तो चार निशान दिखाई दिए, दो तेरे निशान, दो मेरे निशान। और जब मेरे दुख भरे दिन थे, कष्टों भरे दिन थे, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? ये दो निशान क्यों दिखाई दे रहे? तो भगवान कहते, नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ था, तेरे सुख भरे दिन, तेरे खुशी भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़ के चल रहा था, इसीलिए तुम्हें चार निशान दिखाई दिए। लेकिन तेरे दुख भरे दिन, तेरे कष्टों भरे दिन में तेरा दुख और कष्ट मुझसे भी सहा नहीं गया, तो मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, तो ये दो निशान जो दिखाई दे रहे हैं ना, तेरे नहीं है, मेरे। ये है ईश्वर का प्यार। और आज भी अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखो, जब भी आपके जीवन में कष्ट आया, दुख आया, उस समय अदृश्य रूप में सहने की शक्ति कहाँ से मिली थी? लोग आए, सहानुभूति के शब्द कह करके चले गए, लेकिन जो सहन शक्ति चाहिए थी, उस परिस्थिति को पार करने की शक्ति चाहिए थी, वो अदृश्य रूप में कौन दे रहा था? वही तो परमात्मा ने बाहों में उठा लिया था और आपको उस समय को पार करने के कष्ट महसूस होने नहीं दिया, या सहजता से आप पार कर सके। लेकिन उसके बाद कभी उसका शुक्रिया भी किया? आज कोई व्यक्ति हमें समय पर मदद करता है तो कितना शुक्रिया एहसान मानते हैं, बार बार उसके लिए कहते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपका बहुत बहुत थैंक्स। कभी ईश्वर को थैंक्स दिया हमने? कभी नहीं, भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य का स्वभाव है, प्राप्त भी करता है ईश्वर की मदद और उसको भूल भी जाता है, कभी उसका शुक्रिया अदा भी नहीं करते हैं। ये है माता पिता का प्यार। वो इतना प्यार करता है, हम थोड़ा भी प्यार करेंगे ना तो बस वो लुटाना शुरू करता है हमारे ऊपर। ऐसा ईश्वर का प्यार है, इतना भोला है, इसीलिए तो उसको भोलेनाथ कहा। इतना प्यार ईश्वर लुटाता है, कभी उस प्यार को अनुभव करके देखो, आपको लगेगा जैसे आप जीवन में धन्य महसूस करेंगे अपने आप को, हर वक्त ऐसे लगेगा धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। दूसरा संबंध है टीचर। जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो घर आएगा जब स्कूल से तो किसकी बातें करेगा? टीचर की। आज मेरे टीचर ने ऐसे किया, आज मेरे टीचर ने ये सिखाया, आज मेरे टीचर ने ऐसा दिया, है ना, मैं अपने टीचर का फेवरेट हूं, मेरे को ये चॉकलेट दिया, टीचर की ही बातें सुनाता रहेगा। अब माता पिता को टीचर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कहेंगे, बंद कर ये सारा दिन क्या टीचर टीचर लगा के रखा है, डांट लगाते थे। अब जब उसको टीचर के प्रति जब वो श्रद्धा अपनी व्यक्त कर रहा था अपने माता पिता के सामने, तब उसको ये कह दिया गया बंद कर टीचर की बातें कोई सुननी नहीं मुझे, आपने मना कर दी, तो उसका रिस्पेक्ट उस टीचर के प्रति रहेगा? उसको लगेगा फालतू है टीचर, मेरी मम्मी कहती है फालतू है टीचर, बंद करवा देती है, उसका टीचर के प्रति जो भाव और रिस्पेक्ट है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए टीचर के प्रति जब भी वो बच्चा कोई भाव व्यक्त करे तो आप उसकी बातों में इंटरेस्ट लो। क्यों? क्योंकि अगर टीचर के प्रति भाव होगा तो पढ़ाई के प्रति भी भाव जगेगा, और तब वो पढ़ाई में होशियार होगा। अगर टीचर के प्रति भाव ही नहीं तो वो पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा उसका, और न उससे वो होशियारी वो काबिलियत आएगी। इसीलिए टीचर की बात जब भी वो सुनाता है बड़े प्यार से सुनो, भले आप हाँ हाँ करते रहो, आप सुनो नहीं, लेकिन उसका भाव खत्म नहीं करो, उसकी बातें सुनो आप, और तभी उसका पढ़ाई के प्रति भी उतना ही प्यार जगेगा। बिना टीचर के पढ़ाई के प्रति प्यार कैसे होगा? और फिर आप चाहते हो आपका बच्चा पढ़े होशियार होवे, कैसे पढ़ेगा कैसे होशियार होगा? इसलिए टीचर की बातें काटो नहीं, हाँ हाँ करते रहो, उसकी बातें सुनते जाओ, उसका भाव बढ़ेगा तो उसका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागृत होगा, है ना। टीचर की बातें कभी कभी बहुत सुंदर भी होती है। मुझे याद आता है कि मैं जब बचपन में थी तो मैं अपने टीचर की बहुत फेवरेट थी, मैं मैथ्स के टीचर की बहुत फेवरेट थी, लेकिन मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन मेरा टीचर जो था ना, जब भी हमारे परीक्षा होती थी, यूनिट टेस्ट होती थी, तो चक्कर लगाते हुए मेरे बेंच के पास आकर खड़े हो जाते थे देखने के लिए मैं क्या कर रही, और जब भी मेरी गलती होती थी ना, उनको बड़ा दुख होता था, कष्ट होता था कि इतना सिखाया उसके बाद भी इसने गलती कर दी। तो जब क्लास पूरी होती थी, एग्जाम पूरी हो गई, उसके बाद मुझे बुलाते थे, जब बुलाते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, और किसी को नहीं बुलाते, मुझे ही बुलाते और मुझे समझाते थे कि देखो ये गलती तुमने किया, इतना मार्क्स कट जाएगा तेरा, ऐसे प्यार से समझाते थे, लेकिन मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाती थी। लेकिन बार बार मुझे प्रैक्टिस कराते थे, क्लास के बाद बिठा करके अलग अलग ढंग से वो मैथ्स का जो क्वेश्चन होता था वो प्रैक्टिस कराते थे। उनकी भावना यही होती थी कि फाइनल एग्जाम में ये फेल नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी सी गलती को लेकर के फेल नहीं होनी चाहिए। जब वो प्रैक्टिस करने बिठाते थे तो मुझे लगता था और किसी को नहीं बिठाते, मुझे ही बिठाते हैं, बड़ा चिपकू है ये सर, बार बार मुझे ही क्यों बिठाते, बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन जब फाइनल एग्जाम में मेरे सबसे अधिक मार्क्स मैथ्स में आए, सब बच्चों से सबसे ज्यादा खुशी उसको हुई और मुझे हुई। उस समय मैं उस टीचर के प्यार को समझ पाई कि कितना उसका प्यार था मेरे प्रति, कि वो चाहते थे कि मेरे मार्क्स हमेशा फर्स्ट आए। इसी तरह जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है बार बार मेरे सामने भगवान ये परीक्षा क्यों भेजता है, बार बार मेरे सामने भगवान ऐसी परीक्षा क्यों लाता है, यही परिस्थिति बार बार मेरे सामने क्यों आती। लेकिन आप सोचो, शायद उसी परिस्थिति में आप कच्चे, तो परमात्मा भी परम शिक्षक है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, बार बार आपको प्रैक्टिस दे रहा है ताकि प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाओ। तो जीवन के अंदर हर परिस्थिति में आप पास हो जाओ, और उस समय आपके जीवन में जो खुशी होगी उससे ज्यादा खुशी शायद परम शिक्षक के मन के अंदर होगी। तो आप परमात्मा के फेवरेट स्टूडेंट हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जीवन की फाइनल एग्जाम में आप फेल हो जाओ, इसीलिए वो प्रैक्टिस देता है। तो बार बार कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आ रही है तो आपको उस परिस्थिति में परफेक्शन लाने के लिए वो परिस्थिति आपके सामने आती है परीक्षा के रूप में। तो ईश्वर के प्यार को उस परीक्षा के रूप में महसूस करो तो आप समझ पाएंगे कितना प्यार करते हैं भगवान भी आपको, बहुत सुंदर अनुभव होगा। तीसरा संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध, ये संबंध भी बहुत श्रेष्ठ है। गुरु और शिक्षक में थोड़ा अंतर है, शिक्षक हमें बाह्य जगत का ज्ञान देते, गुरु हमें अंतर जगत का ज्ञान देते हैं। टीचर हमें शारीरिक कमाई का रास्ता बताते हैं, गुरु हमें आत्म उन्नति का रास्ता बताते हैं। तो शिष्य के मन में गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है किस भाव से होती है कि मैं गुरु की सेवा किस तरह से करूं, ये भाव रहता है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे यहाँ याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी ने अपनी कुटिया बनाई एक राज्य की सीमा के बाहर, और वहां अपनी वो कुटिया के अंदर रहते थे, तपस्या करते थे, और बड़े सिद्ध महात्मा हो गए थे, मौन रखते थे। तो जो भी उस राज्य से आते थे जाते थे, स्वाभाविक है कि महात्मा जी को देख करके प्रणाम करते थे। महात्मा जी की अगर दृष्टि गई तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे, और बड़े सिद्ध महात्मा होने के कारण लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती थी। कोई बीमार होते थे वो ठीक होने लगे, किसी के सामने कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। तो जरूर है कि जब लोग वापस आते थे तो लोग आपस में बातें करते थे, तो ये बात जैसे हवा की तरह समाज के अंदर फैलने लगी, राज्य में फैलने लगी कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रहते हैं, गुरु जी रहते हैं, बड़े सिद्ध है, उनका अगर आशीर्वाद का हाथ मिल जाए तो जैसे आपकी बीमारी आपके कष्ट सब दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बात फैलती गई और राजा के कान तक बात आई। उस राज्य का राजा बड़ा लालची था, उसने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, ऐसा महात्मा राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहा है, उनको तो अंदर आके रहना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स ठीक होंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी तो इतना राज्य को टैक्स मिलेगा। तो उन्होंने मंत्री जी से कहा, आप जाओ मेरा संदेशा लेकर उस गुरु जी के पास और उनको कहो कि आप राज्य की सीमा के अंदर आकर के रहिए, बाहर मत रहिए, और उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, जितनी भूमि चाहिए उतनी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन बाहर नहीं अंदर आकर के रहो। और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जो सोना मोहर चाहिए वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। मंत्री जी गए संदेशा लेकर के राजा का, गुरु जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हमारे राजा की ये भावना है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आके रहो, जो भूमि चाहिए जितनी भूमि चाहिए और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितना सोना मोहर चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी ने कहा ठहरो, और कुटिया के अंदर गए, एक कमंडल लेकर के आए और मंत्री जी से कहा चले। अब मंत्री जी ने सोचा तो नहीं था कि इतना जल्दी तैयार हो जाएंगे महात्मा जी, तो उन्होंने कुछ सैनिक को आगे भेज दिया राजा के पास, और कहा महात्मा जी मिलने के लिए पधार रहे। तो जैसे ही महात्मा जी को लेकर गए, राजा खुद आगे होकर के स्वागत करने लगे, बड़े सम्मान के साथ उन्हें महल में लेके गए, आसन ग्रहण करवाया और हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता के साथ ये विनती किया कि महात्मा जी आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आके रहिए, जो भूमि चाहिए जितनी भूमि चाहिए हम उसको देने के लिए तैयार है और उसके लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है। तो महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और राजा को दिया और कहा ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दो। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, कमंडल ले लिया लेकिन कमंडल को देखा बड़ा गंदा कमंडल था, काफी सालों से पड़ा होगा, जाले लगे हुए, बदबू मार रहा था, पता नहीं, बहुत गंदा कमंडल था। राजा ने अपने दास दासियों को बुलाकर कहा ये कमंडल साफ करो। अच्छी तरह साफ करके ले आए, जब उसने अपने सिल्क के कपड़े से उसको पोछा और उसमें सोना मोहर भरा और सोचा भी महात्मा जी कोई ना कोई आशीर्वाद कर लेंगे, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए। राजा ने कहा हे महात्मन, गुरु जी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, फिर भी महात्मा जी मौन रहे। दोबारा कहा कि महात्मा जी आपके आशीर्वाद हो जाए, कृपा वृष्टि हो जाए। तब महात्मा जी ने कहा पहले पात्र साफ करो। कहा मैं समझाने, तो कहा जिस तरह ये कमंडल गंदा था, आपको कीमती सोना मोहर डालनी थी तो गंदे पात्र में नहीं डाला, पात्र को साफ करवाया तब उसमें सोना मोहर डाली, इसी तरह आशीर्वाद इतने कीमती होते हैं, उसको प्राप्त करना है तो मन का पात्र पहले साफ करो। अगर मन के अंदर गंदगी भरी हो, पात्र साफ नहीं होगा, तो परमात्मा सतगुरु के भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मन का पात्र साफ करो, अच्छी तरह से साफ करो, तब परमात्मा सतगुरु के वरदान के अधिकारी बन जाएंगे। और जब सतगुरु के वरदान प्राप्त हो जाए तो उसका तो कहना ही क्या, छप्पड़ फाड़ करके देना आरंभ करेगा। पात्रता तो अपनी विकसित करो, अपने आप ईश्वर देने का कार्य करता ही है, लेकिन अगर पात्र नहीं है तो वो देगा भी नहीं। इसीलिए परमात्मा परम सतगुरु है और सतगुरु का सानिध्य अगर चाहिए तो इसी मन के पात्रों को इतना अच्छी तरह साफ करो कि हर पल उसका अनुभव आप स्वयं करते रहो। चौथा संबंध है दोस्त का। खुदा को इसीलिए कहते हैं खुदा दोस्त। खुदा दोस्त की बातें कई बार सुनी है। जाने वाले से एक निवेदन जरूर है, मैं जानती हूं कि कई लोग ऊपर घूमने के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए नाश्ते के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज सत गुरुवार है, जब तक बाबा को भोग नहीं लगेगा कोई नाश्ता मिलने वाला नहीं है आपको। वहां जाने के बाद पश्चाताप करो कि ना नाश्ता मिल रहा है ना अच्छी बातें सुन रहे हैं, इससे तो बेहतर है यहीं थोड़ी देर और बैठ जाओ, 8:30 तक नाश्ता मिलेगा, इसीलिए यहीं बैठे रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो खुदा दोस्त की बातें चल रही थी कि खुदा को दोस्त बना करके तो देखो। आज दोस्ती किसके साथ होती है? क्लास में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, हरेक के साथ हरेक की दोस्ती नहीं होती है, किसी किसी के साथ दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती का आधार क्या? समानता। जहां विचार मिलते हैं, विचारों की समानता है, वहां दोस्ती होती है। हॉबीज की समानता है, वहां दोस्ती होती है। जहां एक ही शहर के हो तो दोस्ती हो जाती है, विदेश में है और अपने गांव का कोई मिल जाए हमें, वहां दोस्ती हो जाती है। वहां उम्र नहीं देखी जाती है, लेकिन अपने गांव का है ना, इसलिए दोस्ती हो गई। तो जहाँ समानता है, उम्र की समानता, विचारों की समानता, गांव की समानता, वहाँ दोस्ती हो जाती है। ईश्वर के साथ हमारी कोई समानता है या नहीं है? है, है। ईश्वर के साथ हमारी भी तीन समानताएं। कौन सी तीन समानता है? सबसे पहले नेचर एक जैसा है। मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो स्वरूप एक जैसा है। दूसरा, गुण एक जैसे हैं। मैं शांत स्वरूप, वो शांति का सागर। मैं प्रेम स्वरूप, वो प्रेम का सागर। मैं ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान का सागर। तो गुण नेचर एक जैसा है, तो स्वरूप एक जैसा, नेचर एक जैसा। और तीसरी समानता है, एक गांव के हैं, वो भी परमधाम का वासी है, हम भी परमधाम के वासी है, एक ही गांव के हैं हम। अब ये तीन समानता काफी नहीं है दोस्ती के लिए? ये तीन समानता के आधार पर ईश्वर के साथ भी हम दोस्ती का संबंध जोड़ सकते हैं। दोस्ती में प्यार ही होता है। दोस्ती में कभी लेन देन दोनों चलता है, एक तरफी गाड़ी नहीं चलती है। एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक बंदे की दोस्ती खुदा से हो गई। तो उसने खुदा से कहा कि हे प्रभु, आप इतने वैकुंठ के मालिक हैं, कभी मुझे भी वैकुंठ का सुख क्या होता है ये अनुभव करा दो ना। तो भगवान ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? क्या मैं थोड़े दिन स्वर्ग का सुख क्या होता है वो अनुभव करना चाहता। भगवान ने पूछा, कितने दिनों के लिए? कहा 10 दिन के लिए, 10 दिन में वापस आना चाहता, परमानेंट नहीं जाना चाहता हूं स्वर्ग में। भगवान ने कहा, ठीक है चलो, आज से 10 दिन के लिए तुझे स्वर्ग में भेज देता हूं, स्वर्ग का मालिक बन के उस सुख का अनुभव करो। बंदे पहले दिन गया वहां पर, देखा क्या सुख है, और 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा? 10 दिन बड़ा कम मैंने कह दिया, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, इतना सुख है यहाँ तो। लेकिन स्वर्ग में तो सब काम फटाफट होते हैं, तो उसने क्या किया, अब 10 दिन में ये स्वर्ग छूट जाएगा, तो इसीलिए अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लेता हूं। ये सोच करके, सारे रिसोर्सेज लगा करके, सारे संसाधन लगा करके अपने लिए ऐसा एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया, और 10 दिन के बाद भगवान को वो स्वर्ग वापस दे दिया। जब वापस दे दिया तो भगवान ने देखा उसने अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया, तो भगवान को भी हंसी आ गई, इस बंदे ने मुझे भी नहीं छोड़ा। लेकिन गुस्सा नहीं आया, हंसी आई। क्यों? भगवान ने सोचा, चलो अब बराबर की दोस्ती तो हो गई, ये है भगवान की दोस्ती। गुस्सा नहीं आता है, दोस्ती के अंदर खुशी होती है, चलो बराबर की दोस्ती। तो भगवान के साथ जिसने दोस्ती का संबंध जोड़ लिया, उसका तो कहना ही क्या। सुदामा अगर चावल मुट्ठी के बदले महल प्राप्त कर सकता है, दोस्ती में ये है। लेकिन यहाँ भगवान के साथ दोस्ती मतलब से नहीं जोड़ना, मतलब से नहीं जोड़ना, क्योंकि अगर वहां सौदाबाजी करने लगे, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं, हे प्रभु इतना प्राप्त हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे या 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, ये सौदेबाजी नहीं करना। दोस्ती में सौदेबाजी नहीं होती है, दोस्ती में प्यार होता है। और प्यार से उसको याद करो तो भगवान दोस्ती इतनी वफादारी से निभाता है कि उसका कहना ही क्या, छप्पड़ फाड़ के देना आरंभ करेगा। दोस्ती जोड़ करके तो देखो। 5वां संबंध जो मीराबाई ने जोड़ा, प्रियतम का संबंध, कभी उसको प्रियतम बना करके देखो। जहर का कटोरा अमृत हो जाएगा, यानी जीवन में जो जहर जैसी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वो सब अमृत हो जाएंगी। कभी उसको प्रियतम बना करके तो देखो, कितना सुंदर ये संबंध है। साथी का संबंध भी ऐसा होता है जिसमें हर बात दिल की शेयर करने की होती है, वायदे होते हैं, कदम पर कदम मिलाते हुए चलने की बातें होती है। ईश्वर के साथ भी ये संबंध जोड़ करके देखो, कुछ वायदे करके देखो। भगवान भी इस संबंध को निभाने में बड़े माहिर है। इसीलिए कहा, सौदेबाजी वाली बातें मत किया करो, उसके साथ संबंध जोड़ करके उस संबंध का सुख अनुभव करके देखो। और छठा संबंध जो सती अनसुया ने जोड़ा, उसको बच्चे रूप में देखा, तो भगवान भी बच्चा बन जाता है। बच्चा बना करके तो देखो। एक बहुत अच्छा अनुभव याद आता है मुझे कि हमारे क्लास में एक माताजी आती थी, सबसे पहला नंबर बैठती थी, उसकी सीट फिक्स होती थी। उस माताजी को कभी भी पूछो, माताजी कितने बच्चे हैं, तो हमेशा कहती थी चार बेटे हैं। तीन बेटे उसको थे, चौथा बेटा उसने भगवान को माना था। हमेशा यही कहती थी, चार बेटे। जो भी बाजार से लाती करती थी, चार हिस्सा करती थी, चौथा हिस्सा आश्रम पर देती थी या गरीबों के अंदर बांटती थी। इस तरह से उसका जीवन चलता था। एक दिन वो क्लास में आई नहीं है, तो जरूर है जो रोज आता है, पहला नंबर उसकी सीट फिक्स होती है, वो अगर एक दिन भी ना आए तो उसके प्रति ध्यान तो जाएगा। तो हमने सोचा कि पता नहीं आज माताजी क्यों नहीं आई, तो पूछा माताजी के पास, शायद कोई है नहीं, बीमार हो गए होंगे, चलो देख के आते हैं। जैसे ही बाहर निकले क्लास के बाद, तो देखा माताजी सामने से आ रही थी। तो हमने माताजी को पूछा, सुबह नहीं आए क्लास में, अभी आए? तो कहा, आज मैं घर में ही अपने बेटे के साथ बैठी थी। हमने सोचा तीन में से कोई आया होगा, पूछा कौन सा वाला आया, तो कहने लगी, अरे उनको कहां फुर्सत है, मैं तो चौथे बेटे के साथ बैठी थी। अच्छा, पूछा क्या बात है, तब सुनाया उसने कि रात से मुझे बहुत बुखार चढ़ा था। हमने कहा फिर? कहा अरे सुबह जब उठी मैं तो इतना शरीर दर्द कर रहा था, जैसे हड्डियां टूट रही है, इतना दर्द था, उठा नहीं जा रहा था, इतना कमजोरी महसूस हो रही थी, इतनी कमजोरी हो रही थी, गला सूख रहा था, आंखें जल रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं रसोई घर में जाकर के पानी पीऊं। हमने कहा फिर? कहा फिर क्या? बस उसको कहा कि बेटा एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा क्या? हमने कहा फिर? कहा कोई आया थोड़ी, लेकिन जो गला सूख रहा था धीरे धीरे गीला हो गया और मुझे संतुष्टि हुई जैसे मैंने पानी पिया। हमने कहा फिर लेट गई तो ऐसा लगा कोई पैर दबा रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन देखती हूँ कोई है नहीं, लेकिन बराबर पैर दबा रहे थे। हमने कहा फिर? कहा फिर क्या? ऐसा लगा कोई सर पे हाथ घुमा रहा है इतना अच्छी तरह से। उतने में नींद लग गई और दो घंटा इतनी अच्छी नींद आई। दो घंटे के बाद उठ के देखती हूँ, न कमजोरी है न बुखार है, बोले ये चौथा बेटा तो इतना अच्छा है जो हाथ घुमा करके ही बीमारी को ठीक कर देता है। तब कहने लगी, वो तीन बेटे तो मेरी सेवा करने से रहे, लेकिन ये चौथा बेटा मेरी सेवा भी करता है। भगवान को बच्चा बना करके देखो, वो आपसे हिस्सा नहीं मांगेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके पैर दबाएगा, आपका सर पे हाथ घुमाएगा, इतना प्यार करेगा। ये उसको बच्चा बना करके तो देखो, बच्चे का सुख देगा वो, आपसे हिस्सा मांगने नहीं खड़ा होगा। दुनिया के बेटे आपके पास हिस्सा मांगने आएंगे, सेवा करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। लेकिन भगवान को बच्चा बना करके देखो, कितनी सुंदर तरीके से वो सेवा करता है। जो संबंध आपको प्रिय लगे ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। बातें करना नहीं आता है क्या? बातें करके तो देखो, बातें खत्म नहीं होंगी। जब सारे दिन में अलग अलग संबंध से, जब सुबह उठो तो सतगुरु का वरदान लो, आशीर्वाद लो, माता पिता के रूप में उससे गुड मॉर्निंग करो, फिर खुदा दोस्त के साथ कारोबार में जाओ, प्रियतम बना करके उसके साथ दिल की बातें करो, कभी उसको बच्चा बनाओ, सारा दिन अलग अलग संबंध निभा करके तो देखो कितना संबंधों का सुख देता है परमात्मा, और इतना सुंदर जीवन हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे मेरा जीवन सुखों का रस से भरपूर हो गया है, खुशियों से भरपूर हो गया है, जीवन की क्वालिटी ही बदल जाएंगी, ये शिकायत समाप्त हो जाएगी कि भगवान में मन नहीं लगता है, फिर आएगा भगवान से मन हटे कैसे, इतना अलग अलग संबंधों से बातें करने में समय कहाँ बीत जाएगा, सारा दिन कैसे जाएगा, खुशी से भरपूर इतना सुंदर अनुभव होगा। तो ये है रू रूहान, आत्मा रू की उस परमात्मा के साथ वार्तालाप, अलग अलग संबंधों से वार्तालाप। कई लोग सोचते हैं क्या बातें करें भगवान के साथ, क्या बातें करें, कुछ भी कर सकते, जो दिल में आए उसके साथ बातें करके तो देखो, धीरे धीरे ये बातें करते करते प्यार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिससे आप बातें करते हैं प्यार भरी बातें, उससे आपका प्यार बढ़ता जाता है, और जब प्यार बढ़ता जाता है तब तीसरी अवस्था आती है जिसको हम कहते एकाग्रता। एकाग्रता यानी मन स्थिर होने लगेगा, उस परमात्मा की याद में समाने लगेगा, उस प्यार में खोने लगेगा, और जैसे प्यार में खो जाएगा, जैसे कोई कुमार है या कन्या है, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक विचार चलते हैं, लेकिन जिस दिन संबंध जुड़ जाए, परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ता है कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्यार से याद करो, कहना पड़ता है, संबंध जुटा, एकांत के पलों में बैठे हैं कि उसकी याद में खो जाते हैं, इतना मन एकाग्र हो जाता है कि पास में से कोई गुजर जाए और पूछा जाए यहां से कोई गया तो क्या कहते हैं, पता नहीं, अरे आंखें खुली है, यहां बैठे इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, पता नहीं चला तो क्या कहते, मेरा ध्यान नहीं था, तो ध्यान कहां था, ध्यान किसको कहते हैं, और ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए या बंद चाहिए, क्या कहेंगे, ध्यान करने के लिए आंखें बंद नहीं चाहिए, बंद आंख से कभी ध्यान होता ही नहीं है, खुली आंख से ही ध्यान होता है, लेकिन यहां जब खुली आंख से बैठने के लिए कहो तो क्या कहते हैं, अरे बहन जी बहुत कुछ दिखाई देता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, अपने प्रिय व्यक्ति की याद में खोने समय माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, मन का दोष नहीं है। कई लोग मन को समझते, मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा, अरे मन को क्यों दोष दे रहे, मन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, कहाँ है प्रॉब्लम, कि शायद शायद ईश्वर के साथ हमें इतना प्यार ही नहीं है, इसलिए मन भाग जाता है, अरे ईश्वर से प्यार करके तो देखो, मन कैसे लग जाता है, उसमें समा जाता है, खो जाता है, तो क्या कहते हैं, तब लोग प्यार किया थोड़ी जाता है, हो जाता है, ईश्वर के साथ भी जब संबंध जोड़ो तो प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो मन खो जाएगा, यह है तीसरी अवस्था कि जब ईश्वर की याद में मन खो जाए, एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की अवस्था कैसी है, आपने दुनिया में तैरक देखे होंगे, एक तैरक है जो स्विमिंग पूल में तैरना जानते है ना, दूसरे प्रकार के तैरक है जो तालाब में तैरते हैं या नदी में तैरते, जो नदी में तैरने वाले हैं उनको तालाब अच्छा नहीं लगता है, और जो तालाब में तैरने वाले उसको स्विमिंग पूल अच्छा नहीं लगता है, और तीसरे प्रकार के लोग हैं, चौथे प्रकार के लोग हैं जो समुद्र में तैरना जानते हैं। और जो समुद्र में तैरने वाले हैं उनको स्विमिंग पूल या तालाब या नदी अच्छी नहीं लगती, विशालता में वो जाते। समुद्र में तैरने वाले भी दो प्रकार के, एक है जो लहरों से टकराना जानते हैं, सर्फिंग कहते हैं उसको, समुद्र में सर्फिंग करते हैं, लहरों के ऊपर जैसे चलना सीखते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो नाव में बैठ के दूर जाते हैं समंदर में और फिर डाइव मारते हैं, और जब डाइव मारते हैं तो एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं, और जब उस दुनिया में प्रवेश करते तो उसको खोजने में लगते हैं। उसको इतना आनंद मिलता है कि समय का एहसास नहीं, कितना समय बीत गया। ऊपर वाले जब सिग्नल देते हैं तब वो ऊपर वापस आते हैं, खो जाते हैं उस समंदर में। ठीक इसी तरह मेडिटेशन की जो तीसरी अवस्था है एकाग्रता, वो समंदर में डाइव करने वाली अवस्था है कि जब डाइव करते हैं एक दूसरे दुनिया में प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में, और जब उस दुनिया में खोने लगते हैं, समाने लगते हैं, इतना सुख प्राप्त करते हैं, कितना समय बीत गया मेडिटेशन में उसका भी एहसास नहीं होता है। जब तक कोई आकर के सिग्नल न दे तब तक महसूस नहीं होता, अच्छा इतना समय हो गया। ये है राजयोग की तीसरी अवस्था। लेकिन ये तीसरी अवस्था तक पहुंचने के लिए पहली दो अवस्था, पहली अवस्था विचार सागर मंथन की जहां एक संघर्ष, और दूसरा जब तक परमात्मा के साथ संबंध न जोड़ो तब तक प्यार होता नहीं है, और प्यार हो जाता है तो फिर ये तीसरी अवस्था बहुत स्वाभाविक रीति से हम अनुभव कर सकते हैं। तब चौथी अवस्था अनुभूति की अवस्था। अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव करना आसान है। अनुभव कैसे होता है? मान लो कि आप यहां आए हैं, ये दिन तो बहुत अच्छे दिन है, लेकिन कभी यहां माउंट में खास करके ऊपर ठंडी के दिनों में आओ, दिसंबर जनवरी जब चल रहा हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, कभी कभी माइनस टेम्परेचर ऊपर जाता है, उस समय आओ। और उस समय आकर के सुबह उठो और नहाने के लिए गर्म पानी न हो और ठंडे पानी की बाल्टी रखी हो, रात में ठंडा पानी भर के रखा हो, और बाथरूम में आप जाओ देखा गर्म पानी नहीं आ रहा है, क्या होगा? कुछ होगा? कुछ होगा? एक ऐसी सिहरन दौड़ेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कमरे में दूसरे ने पूछा क्या हुआ, कहे अरे बड़े ठंडी है, गर्म पानी नहीं आ रहा। दूसरे ने कहा लेकिन वो ठंडे पानी की बाल्टी तो रखी है ना, क्या कहेंगे आप? उससे नहाएंगे क्या? उससे नहाएंगे तो क्या होगा? यानी उसने कहा क्या होगा, आपने हाथ तो लगाया नहीं, पता तो कैसे चला आपको इतना ठंडा पानी है? क्या कहते हैं, हाथ लगाने की जरूरत है क्या, इतना समझ नहीं सकते? तो समझा कैसे ठंडा ठंडा है, ये समझा कैसे? बुद्धि ने देख लिया, बुद्धि के चक्षु द्वारा हमने देख लिया ये पानी ठंडा है, रात का रखा हुआ कितना ठंडा होगा। और अगर मैंने ये डाला तो मन ने भी विचार दे दिया कि अगर ये डाला तो ऐसी ठंडी चढ़ जाएंगी, बुखार में आप बिस्तर पकड़ लेंगे। तो नाये नहीं, बाहर आ गए, रोंगटे खड़े हो गए, सिहरन दौड़ गई। ठंडी का अनुभव कैसे किया बिना हाथ लगाए? ठंडी का अनुभव कैसे किया? विचारों से। अगर विचारों से ठंडी का अनुभव कर सकते तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता? विचारों से हो सकता है? नहीं हो सकता है, करके तो देखो, विचारों की बात। और अनुभव की बात सुनाऊं मैं कि मान लो आप किसी मित्र के यहां भोजन के लिए गए, आपके घर में भी कोई नहीं था, मित्र के घर में भी कोई नहीं था, तो सोचा चलो साथ में मिलकर के आज भोजन करेंगे। और फिर भोजन करने के बाद बैठे बातें करते करते रात को 12 एक बज गया, एक बजे आपको होश आ रहा है, एक बज गया चलो घर चलते। और आप उठे वहां से घर निकलने के लिए, मित्र ने कहा भी आज यहीं सो जाओ, घर में कोई है तो नहीं, यहां भी कोई नहीं, तुम यहीं सो जाओ, सुबह उठ के चले जाना। अरे नहीं नहीं 15 मिनट का तो रास्ता है, आपने कहा। उस मित्र ने कहा लेकिन इतनी रात हो गई है, एकांत का रास्ता है, क्यों जाना चाहिए? आपने कहा कुछ नहीं होता है, मैं चला जाऊंगा। निकले वहां से। अब जैसे ही निकले, उसने अंदर में फीडिंग कर दिया था, एकांत का रास्ता है, इतनी रात हो गई है, क्यों जा रहे हैं? अब जैसे ही आप उस एकांत के रास्ते पर आए, क्या आपने कुछ आवाज सुनी? क्या होगा, क्या होगा? ठंडी के दिन है, पसीना छूटने लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन फिर भी आपने उस विचार को इग्नोर कर दिया, कोई कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, कुछ भी होगा, आगे बढ़ने लगे, थोड़ा तेज चलते हैं। जैसे जैसे तेज चलने लगे, वो आवाज आपने सुना, नहीं ये कुत्ते बिल्ली का नहीं है, लग रहा है कोई चल रहा है, कोई व्यक्ति है। अब आपने सोचा कहीं कोई आदमी तो नहीं चल रहा है मेरे पीछे चाकू लेकर के, और अगर चाकू लेकर के चल रहा हो तो जब मेरे सामने आएगा जो कुछ होगा दे देंगे। लेकिन तेज चलता हूं, तेज चलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा विचित्र आवाज आया, आपको ऐसी हवा सी महसूस हुई पास होते हुए, लगा ये कोई आदमी भी नहीं, लगता है कोई भूत प्रेत है। और ऐसा महसूस हुआ आगे जाके कहीं मुझे दबोच ना ले, पीछे मुड़े और जो भाग के मित्र के यहाँ आ गए, पसीने में एकदम तरबदर। मित्र ने जैसे देखा, मित्र ने कहा क्या हुआ? कहा अरे आज जो मैंने डर का अनुभव किया ना, जिंदगी में ऐसे कभी नहीं हुआ। अब डर का अनुभव कैसे हुआ, कैसे हुआ? और अगर डर का अनुभव कर सकते हैं तो परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं हो सकता है, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है? विचारों की बात है। जैसे ही आप निकले, पहले सोचा कुत्ता बिल्ली होगा, तो पहले चित्र किसका आया बुद्धि के अंदर? कुत्ता बिल्ली। विचार मिले कुत्ता बिल्ली होगा, मन और बुद्धि एक हो गए। जो बुद्धि ने चित्र देखा वही मन ने सोचा। जब आपको चलने की आहट महसूस होने लगी तो कोई आदमी देखा, आदमी देखा चाकू लेकर के, विचार मन ने भी दे दिया कि हाँ कोई आदमी लग रहा है चलने की आवाज से, तो पसीना छूटने लगा। फिर जैसे एक विचित्र सी आवाज आई तो मन ने विचार दिया शायद कुछ और है, और बुद्धि ने चित्र देखा और क्या हो सकता है, अब भूत प्रेत ही है। तो अपनी मन की कल्पना से जैसे सोचा वैसे बुद्धि ने चित्र बना करके दिखा दिया। तो जब मन और बुद्धि एक हो गए, उसी का नाम तो एकाग्रता है, उसी से अनुभूति होती है। अगर डर का अनुभव कर सकते हैं तो परमात्मा प्यार का अनुभव करके देखो, परमात्मा सुख का अनुभव करके देखो, शांति का अनुभव करके देखो। जिस सागर के तले में जाना चाहो, उस सागर में के तले में जाकर के उस अनुभव को प्राप्त करो। यही चौथी अवस्था, अनुभूति की अवस्था, या जिसको दुनिया के लोगों ने कहा समाधि की अवस्था, अनुभूति की अवस्था। और बड़े सुंदर अनुभव होते हैं। तो ये है राजयोग, लेकिन उसके ये चार अवस्था है, जिन चारों अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है? तो अब ये शिकायत नहीं करना, क्या करे मेरा मन तो लगता नहीं लगता। कुछ समय संघर्ष, धैर्यता रखो, ज्ञान का स्रोत चालू रखो, ज्ञान से ही ध्यान होगा। सेंटर पर जाते ज्ञान का स्नान करते रहो, ज्ञान से विचारों की शक्ति को बढ़ाओ, सकारात्मक विचार के खजाने को बढ़ाओ और फिर देखो कैसे ये अनुभव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए, जहां इतनी देर बैठे आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। हम अपने मन को ले चलते हैं उस परमात्मा के सानिध्य में, और उसके लिए जैसे मैं विचार देती जाऊं, उन विचारों को खाली रिपीट नहीं करना अपने मन के अंदर, बुद्धि के द्वारा उस दृश्य को भी देखते हुए महसूस करना, उस भाव को निर्मित करना और अपने मन को ले चलो। बहुत सुंदर, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और एकाग्र चित, जितनी शारीरिक एकाग्रता होगी, बार बार हिलते डोलते रहेंगे ये बताता है मन अंदर कितना व्याकुल हो रहा है, इसलिए जितनी शारीरिक स्थिरता होगी, एकाग्रता होती है, अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार होता है, मन की एकाग्रता को उतना ही जल्दी विकसित कर सकेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी के मध्य में अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा, ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने वास्तव में मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय से न्यारी हूं, चैतन्य शक्ति प्रकाश पुंज, धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं परमात्मा के सानिध्य में, पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में जहां मैं आत्मा ज्योति पुंज मुक्त अवस्था में, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, धीरे धीरे स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं, जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सूर्य के समान तेजोमय मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मेरे पिता परमात्मा मेरे मां पिता है। उस मां पिता की छत्र छाया में मैं स्वयं को देखती हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। वही मेरे परम शिक्षक है। और वही मेरे परम सतगुरु है। परमात्मा की याद की शक्ति से मैं अपने मन के पात्र को साफ करती हूँ। मेरे मन को स्वच्छ और निर्मल करती हूँ। परमात्मा के आशीर्वाद की पात्र बनती जाती है। कितनी न सौभाग्यशाली हूं जो परमात्मा आशीर्वाद का हाथ स्वयं पर महसूस कर रही। वही मेरे खुदा दोस्त भी है। जिसके साथ मैं अपने हर मन की बात कर सकती हूँ। मेरी समस्याओं को बांट सकती हूँ। वो ऐसा सच्चा मित्र है जो समय पर मदद करने लिए तैयार हो जाता है। वही मेरा प्रियतम है। प्रियतम के प्रियतमा सर्व संबंधों का सुख उस परमात्मा से अनुभव कर सकते। सर्व सुखों का रस स्वयं में महसूस कर सकती हूँ। इतना अनंत प्रेम की निर्मल धारा में मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, मेरे मन का मैल धुल रहा है और मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र निर्मल बनती जा रही है। समा जाओ, खो जाओ उस परमात्मा की याद में। कितनी सुंदर स्थिति है ये, मन उस दिव्य स्वरूप में एकाग्र हो जाता। बुद्धि के दिव्य चक्षु से उस दिव्य स्वरूप को अनुभव कर रही, परमात्मा शक्ति की तरंगे मुझ में समाती जा रही। ये तरंग कितनी शक्तिशाली पवित्र है, समा जाओ, हो जाओ धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को सशक्त करते हुए। मैं वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं और आज सारा दिन हर कर्म में, हर व्यवहार में, हर संबंधों में उस तरंग को प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति।